نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب بک میں سے ہم اگلے ٹاپک کو دیکھیں گے. آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 91 پہ. آٹھواں ادب ہے استاد کے معاملے میں. جو چیز ہم پڑھ رہے تھے اسی کی کنٹینیویشن ہے. دہرا دیتی ہوں پیچھے سے. تیسرے چیپٹر کی فصل دوئم پڑھ رہے تھے استاد کے ادب اور عظمت اور احترام کے بیان میں. 13 ڈفرینٹ تھنگز ہیں, 13 ٹاپکس ہیں اس کے اندر. پہلا ہم دیکھ چکے علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم اور تقویٰ کو منتخب کرنا. دوسرا ہے استاد کی فرما برداری اور تواضع. تیسرا ہے شیخ کی تعظیم اور اس کے شایان شان صفات بیان کرنا. چوتھا ہے استاد کے فضل کو فراموش نہ کرنا. پانچواں ہے استاد کے خلاف تباہ فعل پر صبر کرنا. چھٹا استاد کے ارشادات و افادات پر شکر گزار ہونا. ساتواں استاد سے اجازت طلب کرنے کا بیان. اور آٹھواں ادب استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا. آج انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. ہر ایک ٹاپک کے ساتھ ہماری چیک لسٹ میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اس کو ہم اپنی زندگی کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں. چلیے پڑھتے ہیں پیج نمبر 91 پہ. آٹھواں ادب ہے کہ استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا. استاد کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھے. دو زانو ہو کر بیٹھنا کیسے ہوتا ہے؟ یہ تقریباً ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسی تشہد کے اندر بیٹھنے کی کیفیت ہوتی ہے. دونوں ٹانگیں نیچے زمین کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور اس کو موڑ لینا. سکون, خودو اور خوشو کے ساتھ بیٹھے. خودو سکون تو آپ سمجھتے ہیں نا, یعنی بہت موومنٹ نہ کریں. اور خودو کیا ہوتا ہے؟ اعضاء کا ادب کی حالت میں ہونا. اور خوشو کیا ہوتا ہے؟ دل کا جھکاؤ. خوشو و خودو دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان اندر اور باہر سے بہت زیادہ پیسفل, کول اینڈ کام دکھتا ہے. یعنی ایسی ان یوزول قسم کی حرکتیں کرنا, کھجا رہے ہیں, ایک پاؤں پہ بیٹھ رہے ہیں, بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کمر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, بعض لوگ ٹھپ 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 کر کے پاؤں مارتے ہوئے آتے ہیں اور چھڑپ سے پردے کو ہٹا کے نکل جاتے ہیں. ایک ادب, ایک سکینت, ایک وقار. کیونکہ جب انسان کے اندر اس طرح کی ظاہری چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس کا اثر آپ کے دل پہ بھی آتا ہے. آپ محسوس کریں, ماڈرن ورلڈ میں بھی اگر کوئی کہیں جاب کرتا ہے یا کسی بہت سپسٹیفیکیٹڈ, یا آپ سمجھ لیں کہ بہت ایسی کسی جگہ پہ کوئی جائے جہاں اس کو لگے گا کہ دوسرا شخص مجھے نوٹ کر رہا ہے, مثلاً کسی انٹرویو پہ, جاب کے انٹرویو پہ, یا اپنے کسی آئی این ایس کے آفس, کتنا انسان نپے تلے قدم اٹھاتا ہے نا. دروازہ بھی کھولیں گے تو ایسے کہ جیسے بالکل ہاتھ سے, ہلکے ہاتھ سے کھولنا. تو بالکل اسی طرح دل میں اگر علم کی قدر ہوتی ہے تو انسان علم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ شیخ کی طرف, یعنی شیخ کو ہم لفظ چینج کریں گے اپنی سہولت میں, کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ شیخ ایک ذات بھی ہے تو بعض لوگ اس کو ذات والا سمجھتے ہیں, حالانکہ شیخ استاد کو کہتے تھے پہلے دور میں, یا عالم. اور ایک ڈگری بھی ہے یہ دی علم کے ساتھ. شیخ کی طرف دیکھتے ہوئے ہماتن گوش ہو کر ان کی باتوں کو سنیں اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں. ہماتن و گوش, یہ تین لفظ ہیں. ہما کہتے ہیں ساتھ, تن جسم, گوش کان, یعنی بڑے غور سے سننا. یہ جو خرگوش ہے نا وہ بھی اسی سے ہے. خرگوش ریبٹ, بڑے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں نا اس کے. یعنی استاد کے سامنے ایسے بیٹھے کہ اس کی بات کو غور سے سن رہا ہے. ایسا نہیں کہ استاد بات کر رہے اور آپ کچھ اور ہی سوچ رہے, اور نتیجہ کیا ہوا کہ آدھی بات کے بیچ میں آپ سوچنے کچھ بولنے لگے, کیونکہ آپ تو کچھ اور سوچ رہے تھے نا. یعنی خشوع اور خدو ہے نا, تو ظاہر پوسچر بھی نرم ہوگا اور اندر بھی سوچ جو ہے وہ فوکسڈ ہوگی. بلا ضرورت دائیں بائیں, اوپر نیچے نہ دیکھے, خصوصاً دوران سبق یا استاد کے ساتھ بات چیت کے وقت تو اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, उस्ताद डिस्ट्रैक्ट फील करेगा। अब देखिए कि जब रूम में 10, 15, 20, 25 लोग बैठे हों, अब हर थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट जब वो हरकत करने लगे, खड़ी देखने लगे मुड़ के, झुक के दूसरे के नोट्स देखने लगे, अपने सेलफोन से खेलने लगे, तो उस्ताद ज़रूर फील करेगा ना कि कोई बात रॉन्ग है, समथिंग इज़ रॉन्ग। इसलिए इंसान जैसे नमाज में बिला ज़रूरत हरकत नहीं की जा सकती, इल्म की महफिल में भी इसी तरीके से साइलेंट रहना चाहिए। बस दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, क्लास शुरू हो चुकी, आप आके बैठ गए, आपने एकदम देखा कि कलम नहीं चल रहा, अब एक झुंझलाहट शुरू हो जाती है। पहली बात तो ये कि इंसान पहले से तैयारी करके आए, घर से जब निकलें तो चेक करें कि पेपर, पेन, कॉपी, किताब सब ठीक है, इंक है उसमें, शॉर्पनर है, पहले ये सब काम किए जाएं। फिर उसके बाद जब आके बैठा जाए तो फिर अगर बिल फर्ज क्लास जा रही है और काम हो रहा है और बीच में अगर आपकी कोई चीज़ मिसिंग है, बिल्कुल ऐसे ही पोज दें कि जैसे आप बिल्कुल लिख रहे हैं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी बेकार हरकत बाज़ जहन को भटका देती है। इंसान का जहन जो होता है ना, ये बिल्कुल एक लाइन पे चलता है। गाड़ी जैसे अपनी जगह से थोड़ी हिलती है तो उसमें ख़तरा होता है ना, इसी तरह बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स की मूवमेंट्स जो होती हैं वो उस्ताद के जहन से बहुत अहम बात को निकाल देती हैं और उसका नुकसान फिर पूरी क्लास को होता है। और इस वक्त उस्ताद ही की तरफ नज़र करना चाहिए। उस्ताद की तरफ नज़र करने से मुराद आई कांटेक्ट तो है, लेकिन आंखें खोल खोल के देखना ये भी दुरुस्त नहीं होता। बाज़ स्टूडेंट्स जब इल्म की महफिल में बैठते हैं, अब ये स्टूडेंट्स के अदब है ना, एक तो होते हैं दर्स जहां आप बैठे हैं, कभी कभार आप गए, लोग भी हैं दूसरे, नो प्रॉब्लम, उसमें थोड़े रिलैक्स भी लोग हो जाते हैं और वहाँ दर्स देने वाला अंदाज़ बिल्कुल फ़र्क होता है क्लास में पढ़ाने वाले स्टाइल से। लेकिन ये ख़ास तौर पे अदब है इल्म वालों के, और इसमें ख़ास तौर पे एक चीज़ बहुत ही फ़ायदा दे सकती है, वो क्या है कि जब स्टूडेंट्स जो इल्म की महफिल में बैठने के आदी हो चुके हैं, जिनको कुरान अब वाकई समझ आने लगा है, जब कभी वो कहीं दर्स की महफिल में हाजिर हो जहाँ और दूसरे लोग भी हों और वहाँ मोस्टली लोग लिसनर्स होते हैं या कभी कभार सुनने वाले, वहाँ एक अच्छे तालिब इल्म का अपना बिहेवियर बहुत मैटर करता है। हालांकि उस वक़्त दर्स हो रहा होता है, क्लास नहीं होती, लेकिन एक अच्छे तालिब इल्म के पास हमेशा नोटबुक होनी चाहिए, पेपर पेन हो और वहाँ खोल के लिखे, कहीं भी जाए, मस्जिद में हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, ताकि दूसरे लोग उसको देख के मोटिवेट होंगे कि वाकई ये ऐसे लिख सकती है तो हमें भी लिखना चाहिए। देखिए, जब तक हम खुद अपनी चीज़ की वैल्यू नहीं बनाएंगे, दूसरा हमारी वैल्यू नहीं करेगा। तो लिहाजा इंसान को इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए ताकि वो फिर बेहतरीन फ़ायदा उठा सके। उस्ताद के सामने ना आस्तीन को झाड़ दे, ना आस्तीन चढ़ाए। ये क्या होता है, आस्तीन को झाड़ देना या चढ़ाना, यानी इतनी लंबी आस्तीन है कि वो हाथों के ऊपर से गिर रही है। बस जब ऐसे होते हैं ऊपर कोई चादर ऐसी ली हुई है या कोई ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, यानी कैजुअलनेस का एहसास ना हो, और बिल्कुल चढ़ाई हो, ऊपर गर्मी लग रही है, आस्तीन चढ़ाएं, एकदम क्या फीलिंग आती है। किसी को भी आप आस्तीन चढ़ाए हुए देखें तो आप क्या सोचते हैं कि ये आपसे लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। ना ही ऐसे हाथ पैर के साथ खेले। बाज़ लोग बैठते हैं ना दर सुनते हुए भी, या क्लास में अगर ज़मीन पे बैठने का अहतमाम होता है तो फिर अपने नाखनों से खेलना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग वाकई अपने वो फाइलर निकाल के ना तो नाखून रगड़ने शुरू हो जाते हैं। और हाथ को मुंह या दाढ़ी पर ना रखे। ये क्या होता है, अब देखिए कि जब लोग टेबल चेयर्स यूज़ करते हैं ना तो वो कोनियाँ टिका के अपने हाथ जो होते हैं ना वो मुंह के नीचे रख लेते हैं, जैसे एक प्याला सा बनाया हुआ, या सपोर्ट देने के लिए कोनी को देना। अब मर्द है कोई तो ज़ाहिर है वो दाढ़ी पे हाथ रख देगा, ये भी अदब के ख़िलाफ़ है। टायर्डनेस लगती है और लेज़ीनेस लगती है इससे। ना ही नाक में हाथ रखे, ये भी गंदी आदत है, और इससे कुछ निकाल ले। और ज़मीन पर हाथ ना मारे, और ना ही फर्श पर हाथों से ख़त खींचे। लगता है कि ये किताब उस दौर में लिखी गई थी कि जब लोग ज़मीन पे बैठ के, कच्ची मट्टी पे बैठ के भी इल्म हासिल करते थे। तो आज के दौर में ये प्रॉब्लम्स तो नहीं, लेकिन इसकी जगह ये कि कारपेट से ना खेलें, उसके फुंदे ना निकालने शुरू हो जाएं। उस्ताद की तरफ पहलू और पीठ भी ना करे, यानी बिल्कुल ऑपोजिट मुंह करके बैठ जाना, ये बड़ी अहम बात है। यानी बाज़ दफ़ा लोग टेक ढूंढने के बहाने टेढ़े होके बैठते हैं और टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से उस्ताद को देखते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। सीधा बैठिए, बैक करना तो खैर बिल्कुल ही खुदा ना खास्ता पुश फेरने के बराबर हो जाएगा, लेकिन पहलू बदलना भी कोई अच्छी बात नहीं। आप किसी को जब मिलते हैं या बैठते हैं तो आप सामने हमने बैठते हैं ना, ज़रा कभी किसी वक्त बैठ के देखिएगा, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके साथ आएँ और आप चाय का ट्रे बीच में रखें, आप सीधी बैठें और वो आपसे साइड की तरफ मुंह करके बैठें, लेकिन देखें आपको ही मुड़ के, कंफर्टेबल फील होगा? आप बिल्कुल अनफिट फील करेंगे। तो एक पढ़ाने वाला कैसे अपने आप को फिट फील कर सकता है जब लोग उससे पहलू मोड़ के बैठे हों? बिला ज़रूरत ज़्यादा कलाम ना करें, ये तो हर एक के लिए ही बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और हंसाने वाली बात भी ना करें। देखिए कि बाज़ दफ़ा इल्म की बड़ी संजीदा महफिल होती है, कोई एक बंदा वहाँ जाके ऐसी बात कर देता है जिससे सब हंसने लगते हैं, ये पसंदीदा बात नहीं है। उस्ताद जो पढ़ा रहा होता है ना, कभी कभी ख़ास तौर पे आम दरसों में माहौल को हल्का करने के लिए या बोझलनेस को फील कम करने के लिए या बात को इंटरेक्टिव करने के लिए अगर वो कोई हल्की सी बात कह देता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? स्माइल, एक फ्रेशनेस आ जाए, रौनक आ जाए लोगों के चेहरों पे। नींद आ रही थी तो उड़ जाए, क्योंकि जो स्पीकर होता है उसको पता चल रहा होता है कि लोगों को नींद आ रही है या सो रहे हैं। फिर अगर नींद आ रही है तो उसका अच्छा तरीका ये होता है कि कोई हल्की सी बात कर दी जाए जिससे सब फ्रेश हो जाए। उस वक़्त भी हल्का सा स्माइल, बिल्कुल खीखी खी करके हंसना और एक दूसरे को कोनियाँ मारना। और बस दफ़ा क्या होता है कि फिर बात करने वाला बात कर रहा होता है और लोग आपस में एक दूसरे के कानों में कमेंट दे के हंस रहे होते हैं ना, उसी बात को बढ़ा रहे होते हैं, या उनको कोई माजी की बात याद आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इल्म की महफिलों के अदब के ख़िलाफ़ हैं। कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात जिससे बेअदबी की बू आती हो ना करें। बिला वजह ना हंसे, अगर हंसने की ज़रूरत हो तो रोक ले और तबस्सुम पर इक्तफा करें। स्माइल, तबस्सुम किसको कहते हैं? स्माइल। उस्ताद की मौजूदगी में किसी दीवार या किसी और चीज़ पर टेक ना लगाए, ना ही हाथों को पीछे करके इस पर टेक लगाए। पीछे करके कैसे होता है? जैसे कमर की तरफ हाथ करके लोग बैठते हैं ना, स्ट्रेच करने का अंदाज होता है। बिला ज़रूरत बार बार ना खांसे, ना थूके। अगर थूकने की ज़रूरत हो तो रुमाल या कोई कपड़ा वगैरह मुंह में रख कर इसमें लॉब डाल ले, यानी आवाज़ निकाले बग़ैर कुछ इस तरह का काम कर ले कि अगर गला साफ़ करना है तो ख़ुद ही उसको साफ़ कर ले और बाद में उस नैपकिन को फेंक दे या धो ले। और ये सारा अमल पोशीदा तौर पर करने की कोशिश करे। उस्ताद के साथ बात, बहस, मुबासा करते वक्त हाथों को ना हिलाए, बॉडी लैंग्वेज। बात लोग पूरी बॉडी से बात कर रहे होते हैं और मैंने देखा है कुछ लोग बात ज़ुबान से नहीं करते लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनकी होती है, इशारों से बातें करते हैं। और ये चीज़ मैंने यूथ में देखी है, वो बिल्कुल नोट्स ले रहे होते हैं और फीलिंग ऐसे आती है कि जैसे ये लिख रहे हैं लेकिन असल में वो लिख के बातें करते हैं। और ये तजुर्बात मैंने बहुत दफ़ा किए क्लासेस में बच्चियों के साथ। शुरू में जो नई बच्चियाँ आती हैं ना, वो ये प्रॉब्लम करती हैं, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम ख़ुद ही दिलों को बदल देता है। तो मैंने देखा कि कॉपीज़ पे लिख के बातें करती हैं, फिर पकड़ी गई कॉपियाँ, ज़ाहिर है अगर कोई राउंड ले रहा है तो उनको पता चल जाता है, और उस पर लिखा होता है हाउ आर यू, फिर एक लिख रही होती है, फिर वो दूसरी लिख रही होती है और देख वाप को रहे होते हैं ताकि लगे कि आप उनको बिल्कुल अच्छी तरह से चेस कर रहे हैं। अब होता क्या है कि पकड़ी गई कॉपियाँ, आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ? जब लोगों ने देखा कि नोटबुक्स तो पकड़ी जाती हैं तो फिर उन्होंने अपने बाजुओं पर लिखना शुरू कर दिया, जैसे कुछ लोग बैठ के फूल बनाते रहते हैं ना कॉपियों पे, सफ़ों पे, तो उन्होंने अपनी कलाइयों के ऊपर बातें लिखी हुई थी, ये भी फिर पकड़ी गई। वही बात है ना कि अगर पता चल जाए कि अल्लाह ताला हर चीज़ को निकालने वाला है, खोलने वाला है, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को समझ में आने लगती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर आप देखिए कि ये तो आमने सामने की बातें ना, अब हम लोग चूँकि ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के भी कुछ अदब हो सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में कोई किताब लिखी जाएगी तो उसमें ज़रूर ऑन साइट की बजाय ऑनलाइन की भी बातें होंगी, तो इसमें भी कुछ अदब होते हैं जो इंशाल्लाह आगे मेरा ख्याल है कि वो टॉपिक आ रहा है तो उसमें हाँ जी उसमें बात करेंगे जाके इंशाल्लाह, ताकि हम सभी की सलाह हो जाए कि कौन सी चीज़ें जो क्लास को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फिर आगे लिखते हैं, उस्ताद के साथ बहस व मुबाहसा करते वक्त हाथों को ना हिलाए, अगर छींक आए यानी स्नीजिंग तो हत्तुल मकदूर यानी हर मुमकिन हद तक जितनी कुदरत हो आवाज़ पस्त करने की कोशिश करें, रुमाल से चेहरे को ढांप ले, अगर जमाई आ जाए तो रोकने की कोशिश करे, अगर रोकने पर कादिर ना हो तो मुंह पर हाथ रख दे। और वैसे भी इंसान कोशिश करे कि वो तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे जो ऐसे मौक़ों पे नींद लाते हैं, यानी बहुत हैवी नाश्ते का करना या नींद पूरी नहीं हुई, रात देर से सोए, अब क्लास में आके आप जमाई लेंगे और जमाई का तो एक ख़ास असर होता है, एक जमाई लेता है ना तो दूसरा भी शुरू हो जाता है, बल्कि आप खांसने को देख लें, कभी कोई एक खांसता है ना तो थोड़ी देर में दूसरा भी खांसने लगता है, फिर वो एक चेन लग चलने लगती है और वो वाकई फीलिंग आती है कि ये सब बारी लगाई हुई है इन्होंने, और बिल्कुल अनयूजुअल होता है, यानी बिल्कुल लोगों को ख़ुद नहीं पता चलता और ना चाहते हुए भी उनसे ये हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आलिम का तुझ पर यह हक है कि इनकी मजलिस के लोगों पर अमूमी सलाम और इन पर खुसूसी सलाम किया जाए, यानी आम लोगों को आम तरीके से सलाम किया जा सकता है और इल्म वाले को थोड़े अच्छे तरीके से ज़्यादा बढ़ा के इनके सामने बैठा जाए। बहुत लोग सामने बैठने की बजाय साइडों पे बैठना चाहते हैं तो ये भी बेदबी लगती है, मतलब आप देखिए कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं और आपके सामने कोई है ही नहीं तो वो फिर एक अजीब सी फीलिंग आएंगी ना। इनके सामने हाथों से इशारे हरगिज ना करे, ना ही आँखों से इशारे हों, इनको हरगिज़ ये ना कहे कि फ़लां शख्स तेरी बात की मुखालफत करता है, इनके सामने किसी की गीबत करने से गुरेज करो। ये जो बात है ना कि फ़लां आपकी बात की मुखालफत करता है, ये बात शायद आपको थोड़ी अजीब लगेगी कि ये कैसे लोग कह सकते हैं कि किसी को ये ना कहे। बात सिर्फ आप देखिए कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा यानी सोशलाइजिंग करते हैं ना, तो बैठ के महफिलों में बात करते हैं, यानी ऐसी अनइंटेंशनली एक ख़ास माहौल से बात हो रही होती है, कोई उसमें बुराई का रंग नहीं होता, या होता है तो वो इस तरह का नहीं होता कि जिससे कोई इस्लाह हो सके या वाकई किसी की ऐसी बात करनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा वो बातें जो सबके बीच में होती हैं बाज़ जगह फिर वो इस तरीके से पेश कर दी जाती हैं कि लोग ये बातें कहते हैं। कभी भी कोई बात ऐसी हो ना तो उसको एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचें कि क्या ये बात है, रियल है, सच है, सच नहीं है तो फिर तो वही लोगों को ही रोक देना चाहिए कि आप ये बात ना करें, ये दुरुस्त तरीका नहीं है कि आप ये बात कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, फिर तो कहानी वहीं ख़त्म करके आ जाए, स्टॉप इट, वो कहानी ख़त्म हो गई, लोग भी सोच जाएंगे कि वाकई हम गलत सोच रहे थे, बात ख़त्म। लेकिन ये करना कि वहाँ बैठ के खामोश बैठे रहें कि अब क्या फ़ायदा, क्या कहूँ, दोस्त हैं, साथी हैं, रिश्तेदार हैं, चलो छोड़ो, और बाद में वो बात इस रंग में आगे पेश करनी कि सुनने वाले को जिसकी बात है उसको तकलीफ़ हो, क्योंकि गलत बात सुन के तो तकलीफ़ ही होती है ना, चाहे इंसान सब्र कर ले। हाँ सच बात है, अगर ठीक बात है तो उसकी इस्लाह का कोई और भी तरीका हो सकता है, उसको अच्छे रंग में भी बयान किया जा सकता है, और ये बात कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती कि इंसान दिल में तो आपके लिए बहुत गलत बातें सोचता रहे और ज़ुबान से ये सोचे कि नहीं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए मैं आपको किसी की कोई बात नहीं बता सकता। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं किसी के लिए भी हो सकती हैं, अपने दोस्तों में साथियों में ये बात हो सकती है। मिसाल दूंगी कि जैसे एक माँ है और उनको लग रहा है कि उनकी छोटी बच्ची है और उनके स्कूल में सही पढ़ाई नहीं हो रही, और वो बच्ची भी उनको कह रही है कि मुझे स्कूल में नहीं जाना, कुछ ऐसे मामलात होते हैं, किसी ने शेयर किया मेरे साथ तो इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो वो कहने लगी कि वाकई मुझे अब फिक्र हो रही है कैसे बच्चों के साथ मामला क्यों हो रहा है, तो मैं फ़लां को मिलने जाती हूँ जो कि अब वहाँ काम नहीं करती उस स्कूल में ना, पहले थी अब वो उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या वाकई को ऐसी चीज़ है तो फिर मैं भी बात सुनूँ। तो मैंने कहा देखें कि आप उनके पास क्यों जा रही हैं, जो तो ख़ुद नहीं काम कर रही, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगी कि ये बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, आप क्यों नहीं स्कूल की प्रिंसिपल के पास जाएँ या उनकी जो बच्चों की क्लास अटेंडेंट होती हैं, सो उन छोटे छोटे बच्चों के होते हैं बहुत सारे, वहाँ जाके सिंपल टू दी पॉइंट बात कर लीजिए कि मुझे लग रहा है मेरी बच्ची का मैथ ठीक नहीं है या मेरी बच्ची की केमिस्ट्री ठीक नहीं है, तो मसला हल हो जाएगा, रियल पिक्चर सामने आएगी। बहुत माशाल्लाह वो अच्छी हैं, समझ गई, कह रही हैं आपने बहुत अच्छा किया, अब मैं उनके पास नहीं जा रही, मैं उनकी टीचर या प्रिंसिपल के पास जाऊँगी, तो मैटर ख़त्म हो गया ना। तो लिहाजा इनके सामने किसी की गीबत करने से गुरेज करो, इनकी गलती के दर पे ना रहो। दर पे रहना क्या होता है? दर कहते हैं दरवाजे को, पे पर यानी दरवाजे भी ना खड़े रहो कि कोई गलती पता चले और फौरन उसके पीछे लग जाएं। अगर इनसे गलती हो भी जाए इनको माजूर समझें, माजूर से यहाँ माना हैंडीकैप होना नहीं है, यानी उज़र समझें, कोई उज़र हो सकता है ना किसी के अंदर। और मैं इस चीज़ पे हमेशा, एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आज यहाँ नहीं है दुनिया में, तो उनकी एक बहुत अच्छी बात लगती है, मर्दों को ही खिताब करते थे, कोई फिकी बात नहीं कर रही, सिर्फ उनकी आला ज़र्फ़ी बता रही हूँ, कि बहुत फेमस भी थे लोग, उनको बहुत लीड भी, मतलब लोग उनको फॉलो भी करते थे, तो वो मतलब दाढ़ी के मामले में थोड़ा इस तरह का था, उनका कोई मामला के ख़त बनाते थे या काटते थे सोन, लेकिन दाढ़ी थी, तो वो जब भी कोई ये मसला करते थे शेयर, तो कहते थे लोगों मेरी दाढ़ी पर बात ना करना, मेरी दाढ़ी को देख के ना सोचना, सुन्नत यही है जो अल्लाह के नबी ने कही है, मेरे लिए भी दुआ करो कि मुझे भी अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे के मैं इसको बढ़ा लूँ। एक सिंपल सा मैंने आपको इशारा दिया, मैंने ख़ुद सुनी उनकी स्पीच में ये बात, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हुई कि देखें उन्होंने कितनी जुरत का इजहार किया ना इस बात को कह के देखो मेरे पे नहीं रहो। हर इंसान के अंदर बात हो सकती है, हो सकता है वो किसी और एंगल से हो, कुछ लोग हुसन परस्त होते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा अपने आप को साफ़ सुथरा रखना होता है, कई चीज़ें हैं, तो ये छोटी छोटी बातों को वजह बना के उनको तुम इस तरीके से ना करो कि बस ये सोच लो कि इनका उज़र होगा। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इनका एहतराम करें। अल्लाह की रज़ा के लिए क्यों? क्योंकि असल रज़ा ही वो है। अगर बाज़ दफ़ा हम माँ बाप या उस्ताद या अपने जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको खुश करने के लिए एहतराम करते हैं ना, तो वो भी ठीक नहीं। ये पॉइंट जो है ना हाईलाइट करने के काबिल है, अगर आप करना चाहें। अल्लाह की रज़ा के लिए जब किसी का एहतराम करेंगे ना तो रब की रज़ा मिलेगी। बंदों की रज़ा, रज़ा कहते हैं खुशी को, बंदों की खुशी के लिए अगर आप उनका एहतराम करेंगे ना तो अब किसी भी वक्त ख़तरे में हैं। अल्लाह की रज़ा बीच में आ जाएगी ना, सारी चीज़ों का किबला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आगे लिखते हैं कि अगर इनको किसी काम की ज़रूरत हो तो दूसरों से बढ़कर करने की कोशिश करें। अगर वो सुस्ती या काहली का मुजाहरा करे तो इल्हाह ना करे, यानी उस्ताद किसी वक्त लेज़ी फील कर रहा है या वो कह रहे नहीं चले आज नहीं पढ़ते, अच्छा चले आज जल्दी छुट्टी कर लेते हैं, तो फिर इल्हा क्या होता है, यानी आहोजारी करना, यानी लिपट ही जाना, नहीं नहीं ज़रूर आप प्लीज़ पढ़ाएं, हम तो इतनी दूर से आए हैं और अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, और फिर दिस एंड दैट, ऐसा ना करें। इनकी मजलिस और सोहबत को गनीमत जाने। इनकी मिसाल समर और दरख्त की सी है, यानी अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि मुझे इस महफिल में बैठने का मौका मिला और मैं यहाँ से कुछ फल लेके जाऊँ। समर और दरख्त की मिसाल कैसे, जो आलिम है वो दरख्त है और वो बातें जो बताता है ना वो समर है। ज़रा बहुत ही प्यारा नुक्ता है ये, बारीक सी बात है, अगला जुमला भी पढ़ेंगे तो मज़ीद अच्छी तरह समझ आएगी। कहते हैं कि इनकी मजलिस और सोहबत को गनीमत जाने, इनकी मिसाल समर और दरख्त की सी है, इंतज़ार में रहने से फल फेंक देता है, और अगर ख़ुद चढ़ के कच्चा तोड़ने लगे फल तो हाथ में आ जाएगा लेकिन खट्टा होगा या कड़वा होगा। इसलिए यानी इस बात का तलुक पीछे वाले जुमले से कि अगर उस्ताद का जहन ही नहीं अभी तैयार वो बात कहने को, या वो सुस्ती फील कर रहा है या बीमार है या उसको लगता है कि आज अगर ये बात की तो सही नहीं रहेगी, तो फिर इंतज़ार कर ले ताकि पका हुआ फल आए। हो सकता है उस्ताद की तैयारी ना हो उस दिन, कई रीज़न्स हो सकती हैं ना, तो ये सारे फैक्टर सामने रखते हुए इंतज़ार करे और फल फेंकता है। फिर आप देखिए कि यहाँ एक और भी इस मिसाल से बहुत ही खूबसूरत साइड इशू निकलता है कि असल नज़र समर पे रखे, फल पे रखे, दरख्त पे नज़र ना रखे। ये सीधा खड़ा है या झुका हुआ है या लेटा हुआ है या ये बूढ़ा है या इसके ऊपर छाल है कि नहीं। और हमारे यहाँ तो मारूफ मिसाल भी है ना कि क्या है, शायद आप लोग सही बोलेंगे, मैं तो शायद ये भी ठीक ना बोलूँ, कुछ इसी तरह की बात है ना कि आम खाने से मतलब रखो, दरख्त गिनने से नहीं। यानी दरख्तों को ना देखो कि क्या हो रहे हैं, कितने हैं, तुम आम खाओ, जो समर मिलता है उसको ले लो और समर कितना मीठा होता है, दरख्त कितना देखिए ब्राउन कलर का खुरदरा सा होता है लेकिन फल कितना सॉफ्ट होता है। तो अक्लमंद और बानसीब कौन होगा जो फल ले लेगा, उसको फल अच्छा ना लगे तो फिर और बात है, उसको छोड़ दे, लेकिन जो दरख्त है ना उसके ऊपर ना नज़र रखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस वसीयत में उस्ताद के अदब के मुतालिक तमाम ज़रूरी बातें बता दी हैं। सिर्फ एक पैरा है लेकिन एक बंदे के मुस्तकबिल को मुतय्यन करता है। बाज़ बुज़ुर्गों का कहना है उस्ताद की तज़ीम में ये भी है कि इनके पहलू और बराबर में ना बैठा जाए और ना ही इनकी जाय नमाज पर बैठा जाए और इनके तकिए पर टेक ना लगाई जाए। अगर उस्ताद हुक्म भी दे तो ऐसा ना करे। हाँ, अगर वो सख्ती से हुक्म दे तो इस पर अमल करने में मुजायका नहीं, फिर भी बात में ऐसा ना करे। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी बात है और मुझे कुछ याद भी आ गया इसको पढ़ते हुए। पहली बात है कि पहलू में बैठना। पहलू में बैठना क्या होता है, जैसे एक ही टेबल और दो चेयर्स रख दी जाती हैं, मैंने ये दोनों एक्सपीरियंस किए हैं इसलिए मुझे थोड़ी हंसी भी आ गई, कि मॉडरेटर बना दिया जाता है। एक मौका ऐसा हुआ कि कोई कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ हमारे उस्तादों में कोई इनवाइटेड था, तो मॉडरेटर अमूमन वो उसी को बनाते हैं कि जो उसके बारे में जानता भी हो और बात करे। तो किसी एक मौके पर मुझे भी उन्होंने ये मौका दे दिया कि इस लेक्चर में आप मॉडरेटिंग करेंगी। मेरे लिए इंतहाई मुश्किल वक्त था, यकीन करें, कि एक ही टेबल है सामने और पीछे सामने आपके लोग हैं, आप अपने उस्ताद के साथ पहलू में बैठे हुए हैं। उन लोगों के अपने प्रोटोकॉल होते हैं कि नहीं ये लाजमी है। खैर, मैंने चंद मिनट शुरू में थी वो तो मैंने खड़े होकर माइक पे बात कर दी, जाके उनके बारे में बताया, उसके बाद मैं नहीं बैठ सकी। मैं वहीं नीचे जो स्टेज जो था उसके ऊपर मैं जैसे चौकटी मार के बैठते, मैं वहाँ बैठ गई साइड में। जिम्मेदारी भी होती है, टाइम बताना है, क्योंकि बात करते हुए वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, चिट देनी है, वो काम मैंने किया, लेकिन मैं उनके साथ बराबर नहीं बैठ सकी, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। बता इंसान ये बातें कहने की भी नहीं होती, ये बताने की भी नहीं होती, और ये किसी के कहने से आती भी नहीं है जब तक आपके अंदर ये चीज़ ना हो। एक सोफे पर नहीं बैठ सकता इंसान, इसको भी मैंने प्रैक्टिकली कई दफ़ा देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं पाकिस्तान जाऊं या अपने मुल्क में, तो अपने उस्तादों से मुलाकात होती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। और बैठने का अंदाज़ फिर ऐसे फील होता है कि जैसे कन्नी, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी करवट लेके बैठो, बिल्कुल सीधा बैठना अच्छा नहीं लगता। फिर इसी तरह आप देखिए कि तकिए पर टेक ना लगाई जाए। मुझे अच्छी तरह याद आ गई इस बात से कि एक मौके पर मैं मक्का में थी, उमरे पर गई, वहाँ मेरे उस्तादों में से भी कोई था, खैर उनके पास मैं गई, तो उनके सारे होटल में जहाँ वो ठहरी हुई थी मैं भी वहाँ गई। अब वो बिल्कुल एक लेयर मूड में थे, अब बेड पे वो भी बैठी, तो उन्होंने कहा आ जाओ इधर, तो इतना यानी अजीब सा लग, नहीं ये कैसे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब ये उनकी मोहब्बत है। फिर बाद में उनको कहीं जाना भी था तो मैं बैठी हुई थी, और भी लोग थे साथ थे, तो उनका अच्छा नहीं आप लोग जहाँ बैठे तो मैं जाती हूँ और आप लोग आराम करें इधर। यकीन करें कि वो कैफियत आज भी फील होती है ना, तो झुरझुरी सी आने लगती है कि ये कैसे हो सकता है। इंसान जब अपने दिल में किसी के लिए मोहब्बत महसूस करता है ना, तो उसके लिए ना लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, ना दिखाने की ज़रूरत होती है। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि मेरे अपने उस्तादों में को मेरे पास था और मैंने उनको अपने बेड पे लेटने को कहा, और उसके बाद से वो मुझे अपनी बेडशीट, वो तकिया, वो चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं, और जब मैं उसको देखूँगी मुझे याद आता है कि इस पर मेरी उस्ताद लेटी थी। तो ये वो बातें हैं कि जो दिल के गहरे जज्बे होते हैं, और ये जज्बे ज़ुबान से नहीं कहने के होते, अंदर से दिखते हैं। और ये बात कितनी प्यारी है कि अगर वो सख्ती से कहें कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, लेकिन दोबारा ना कहें कि अब एक दफ़ा तो उन्होंने कह दिया था तो अब बस मुझे तो छुट्टी मिल गई और मैं तो देखो उनके तकिए पे भी सो सकती हूँ, ऐसा ना करें। इज्जत देने को फौरन बैठ जाएं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उठ के फिर नीचे चले जाएँ। बहरहाल, इस मुकाम पर बाज़ उलमा ने कलाम किया है कि आया, आया का मतलब होता है क्या, ऐसे मौके पर अदब के तकाजे पर अमल करना ऊला है या उस्ताद के हुक्म की तामील बेहतर है। सवाल समझे, यानी बाज़ स्कॉलर कहते हैं कि क्या इस वक्त अदब का तकाजा पूरा किया जाए यानी ना बैठा जाए, या उस्ताद की बात मान के उनके हुक्म को मान लिया जाए, तो फिर इसका क्या इलाज है। सोचें आप भी, आगे पढ़े बगैर आप हों तो क्या सोचें जी। राजिह कॉल ये है कि अगर उस्ताद जिस्म के साथ हुक्म दे और इसकी खिलाफ वर्जी दुश्वार हो, तो تو امتثال امر اولا بہتر ہے. اور اگر استاد جسم سے حکم نہیں دے رہا ہو, محض اس کی دل جوئی کے لیے کہہ رہا ہو, تو امتثال امر کی بجائے تقاضۂ ادب پر عمل کرنا اولا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ استاد اس کے ادب اور احترام کا امتحان لے رہا ہو. مجھے پتا آپ کو یہ جملہ سمجھ نہیں آیا ہوگا, بہت ہی مشکل اردو تھی, آپ اس کو عربی سمجھ لیں چلے. مراد کیا ہے اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ اگر تو استاد پورے شد و مد سے, غور سے, دل کی گہرائی سے کہ نہیں آ جاؤ میری خوشی ہے بیٹھو, تو مان جائیں. لیکن اگر لگے نا نہیں ایسی مروتن کہہ رہا ہے, اب وہ مروت کو کہنا استاد کے ظاہر اور باطن کا فرق نہ سمجھیں کہ دیکھو دل سے تو نہیں چاہ رہے تھے اور اوپر سے کہا بیٹھ جاؤ, نہیں, اگر آرام سے کہہ رہے تو نہیں کرو. اور آخری بات تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ بعض دفعہ استاد امتحان بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ بھلا دیکھتا ہوں اس میں کتنے ایٹیکیٹس ہیں, کتنے مینرز ہیں. تو مینرز کے ساتھ انسان کی قسمت بدل جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھا, انجوائے کیا میں نے اس کو پڑھاتے ہوئے, اور اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے عمل میں دکھنے لگیں. تو ٹھیک ہے جی, الحمدللہ بات ہو گئی یہاں تک, اب وقت بھی پورا ہو چکا ہے اس ٹاپک کا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی بات کو پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.